हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز. ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شروع میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. آپ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو 10 وصیتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مجھے ارشاد فرمائی تھیں، ان میں سے جو پہلی ہے، فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. آپ نے وصیت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو وحدہ لا شریک ہے. شرک کا جو گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ کہ تجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، اگرچہ کہ تجھے جلا ہی کیوں نہ دیا جائے. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، یعنی جل جانا قبول کر لینا اور ہلاک ہو جانا یا قتل کیا جانا قبول کر لینا، یہ عزیمت برداشت کر لینا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور دوسری بات فرمایا، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. والدین کی جو نافرمانی ہے وہ نہ کرنا، خواہ تمہیں حکم دیں کہ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان سے الگ ہو جا، وہ حکم دے دیں کہ یہاں سے چلا جا، اپنا ساز و سامان لے جا، اپنے اہل و عیال لے جا. اب ایسے وقت میں انسان کہاں جائے اگر اسے گھر سے ہی نکال دیا جائے، اور پھر وسائل و اسباب بھی نہ ہوں تو انتہائی پریشانی کی بات ہے. اور اس وقت کے جب اس کی نظروں کے سامنے اسے اور اس کے ساز و سامان کو، اس کے اہل و عیال کو گھر سے نکالا جا رہا ہے تو بندہ برداشت نہیں کرتا۔ تو کہا ایسے وقت میں بھی اپنی زبان کو لگام دینا، لا تعقنا، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، خواہ وہ تمہیں حکم دے کہ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان سے جدا ہو جا۔ اور تیسری وصیت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا فرض نماز قصدن ترک نہ کرنا، جان بوجھ کر، جو فرض نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ نمازیں پانچ ایک دن کے اندر فرض ہیں۔ فرمایا فرض نماز جان بوجھ کر قصدن ترک نہ کرنا، اور اس کی وجہ ارشاد فرمائی، کیونکہ جس نے بھی عمدن فرض نماز کو ترک کر دیا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کی جو امان ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو ایسا ہرگز بھی مت کرنا، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، وہ پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہو، نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کی جائے، اس کا درس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کے ذریعے سے وہ درس ہم تک پہنچا۔ طبرانی اوسط میں ایک حدیث مبارک ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ بگڑ گئی تو سبھی بگڑے ہوں گے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ بندہ خائب و خاسر ہو جائے گا، وہ ناکام نامراد ہو جائے گا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اگر وقت میں نماز بندہ قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہو جاتا ہے کہ میں اس کو عذاب نہ دوں، اور بے حساب ہی اسے جنت میں داخل کر دوں۔ یعنی نماز کو پابندی وقت کے ساتھ قائم کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر چلا جاتا ہے، اور پھر رب تبارک و تعالی اسے عذاب سے مامون فرماتا ہے، محفوظ فرماتا ہے، اور بے حساب اپنے فضل و رحمت کا صدقہ اللہ کریم اسے یہ جزا عطا فرمائے گا کہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور چوتھی بات، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمَرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، فرمایا شراب نہ پینا، کیونکہ ہر بے حیائی کی جو بنیاد ہے وہ یہ گناہ ہے، شراب۔ انسان جب یہ شراب پی لیتا ہے پرواہ نہیں رہتی، نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی کوئی تمیز ہے، نہ کوئی پڑوس کی تمیز ہے، نہ کسی عورت کی تمیز ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ سامنے میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، کون ہے۔ تو یہ تمیزیں سب ختم کر بیٹھتا ہے، حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہر بے حیائی کی بنیاد ہے۔ اور پانچویں بات فرمایا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ هَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ارشاد فرمایا کہ معصیت سے، گناہ سے بچتے رہنا، یعنی جان بوجھ کر کوئی بندہ اگر نماز کو ترک کر دیتا ہے تو یہ گناہ ہے، اس معصیت سے بچنے کا گویا کہ رب کے محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور فرمایا کیوں بچنا، اس لیے کہ معصیت اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے، इसलिए हमें गुनाहों से बच जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो अल्लाह को राजी करना है, और रब की रिजा के लिए हमें गुनाहों से बचना है। और छठी बात फरमाया वह इय्याक वल फिरार मिन अज़्ज़हफ व इन हलकन नास। मैदान जिहाद जहां मुसलमान कुफार के मुकाबले में लड़ रहे हैं, उस मैदान जिहाद से फरार ना होना, खा लोग हलाक हो जाएं, तू वहां डटा रहना। और सातवीं बात व इज़ा असाबन नास मूता व अंत फीहिम फसवुत। जब लोग ताऊन की वजह से मौत का शिकार हो जाएं और तुम इनके अंदर मौजूद हो, व अंत फीहिम, फरमाया फिर वहीं पर ठहरे रहना, वहीं पर रुके रहना, वहां से भागना ना, वहां से दौड़ना ना। और आठवीं बात वह अनफिक अला इयालिका मिन तौलिका, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो रब करीम ने तुम्हें अता फरमाई है, अपने माल में से अपनी औलाद पर खर्च करना, हलाल कमाए अपनी औलाद को खिलाए और हराम के गुनाह से अपनी जात को बचाए। और नौवीं बात फरमाया वला तरफा अनहुम असाका अदबन, अदब सिखाने की खातिर अपनी औलाद से समझौता ना कर। और दसवीं बात फरमाया वा अखिफहुम फिल्लाह, और अल्लाह के बारे में उन्हें डराते रहो, यानी औलाद के दिल में, खुद अपने दिल में तो इंसान के खौफे खुदा होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ औलाद के दिल में भी खौफ खुदा को पैदा किया जाए। गोया फरमा दिया कि अपनी औलाद को कुछ दो या ना दो, लेकिन उनके दिल के अंदर तकवा और परहेजगारी को जरूर पैदा करना, और ये तकवा ये परहेजगारी खौफ खुदा से पैदा होता है। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये 10 बातें वसीयत हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से सहाबा के जरिए से हमें पहुंची। हम पर भी लाजिम है कि इन 10 बातों पर अमल करें ताकि दुनिया संवर जाए और आखिरत भी हमारी कामयाब हो जाए। और यही मकसद है दुनिया में आने का कि हम अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लें। और ये वो बातें हैं जिनके जरिए हम अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लेंगे, और जब ये राजी हो गए दुनिया कामयाब है और आखिरत में भी सुरखुरी मिलेगी। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन कुछ अहकाम नमाज सीखते हैं ताकि नमाज जो पढ़ी जाए वो ऐसी नमाज हो कि जिस नमाज के जरिए से हम अपने रब को राजी कर लें। नमाज की हकूक वाजिबा जो हैं उनको अदा करके जो नमाज पढ़ी जाती है वो अल्लाह की रिजा का सबब बन जाती है। गुज़िश्ता सिलसिले में हमने फराइज नमाज के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। 7 चीजें नमाज में फर्ज हैं, तकबीर तहरीमा, कयाम, किरात, रुकू, सुजूद, कादा अखीरा और खुरूज भी सुनई ही। ये 7 चीजें हैं जो नमाज में फर्ज की हैसियत रखती हैं। गुज़िश्ता सिलसिले में हमने इनमें से 5 के हवाले से मुख्तसरन कलाम किया था, और बकिया जो 2 हैं आइए आज के सिलसिले में उन्हें शामिल करते हैं। नमाज का जो छठा फर्ज है वो है कादा अखीरा। कादा मतलब है बैठना। 4 रकत नमाज पढ़नी हो, 2 पढ़ने के बाद बैठ जाते हैं, ये कादा उला है, ये करना वाजिब है। और आखिरी 4थी रकत पढ़ने के बाद जो बैठते हैं सलाम फेरने से पहले, ये कादा अखीरा होता है। 2 रकत वाली नमाज में 1 ही कादा होता है और वही कादा अखीरा कहलाता है। 3 रकत वाली नमाज जैसे मगरिब की नमाज है या वितर है, उनमें 2 रकत के बाद कादा उला है, फिर आखिर में 1 और पढ़ने के बाद यानी 3 रकतें मुकम्मल करने के बाद कादा अखीरा होता है। ये जो कादा अखीरा है ये फर्ज है। नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात यानी व रसूलुहू तक पढ़ ली जाए, ये फर्ज है। आइए ज़िमनन कादा की सुन्नतें भी आप समाप्त कर लीजिए। मर्द का दूसरी रकत के सजदों से फारिग होकर बायां पांव बिछा लेना, दोनों सुरीन उस पर रख लेना और फिर बैठ जाना, और सीधा कदम खड़ा कर लेना, सीधे पांव की उंगलियां जो है वो मुड़कर किबला की रुख हो जाना। ये कादा की सुन्नतों में से है। सीधा हाथ सीधी रान पर रखना, उल्टा हाथ उल्टी रान पर रखना, ये भी सुन्नतों में से है। उंगलियां अपनी हालत पर यानी नॉर्मल छोड़ना कि ना ज्यादा खुली हुई हो और ना बिल्कुल मिली हुई हो, उन्हें बिल्कुल नॉर्मल अपने रान के ऊपर नॉर्मल रख लेना। अत्तहियात में शहादत का कलिमा जब हम कहते हैं तो उस वक्त इशारा भी करना। इसका तरीका कार ये होगा कि आखिरी उंगली जिसको छुंगलिया कहा जाता है ये और इसके साथ वाली को बंद कर लेना, अंगूठा और ये जो बीच वाली उंगली है इनको साथ मिलाकर एक दायरा बना लेना, हल्का बना लेना। और इल्ला पर जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला आए तो उस वक्त इस उंगली को गिरा देना। तो ये है उंगली के साथ इशारा करने का तरीकाकार। और जब ये इशारा किया जाए तो उंगली को हिलाना नहीं है, बार बार इसको हिलाना नहीं है, बल्कि इल्ला पर फौरन उंगलियां सीधी कर लेनी है। और इसका तरीकाकार मैं दोबारा दोहरा देता हूं इस तरह कि आखिरी उंगली और साथ वाली उंगली को हथेली के साथ मिला देना, बड़ी उंगली और अंगूठा इन दोनों का दायरा बना लेना और अशहदु अल्लाह पर इसको खड़ा करना, ला इलाहा इल्ला इल्ला पर नीचे गिराकर हाथ को दुरुस्त कर लेना। दूसरे कादे में भी इसी तरह बैठिए जिस तरह पहले में बैठे थे और तशहुद भी पढ़ना है। तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद इब्राहिम यहां पर पढ़ना अफजल है। नवाफिल और सुन्नत गैर मौकदा असर और इशा की जो सुन्नत कबलिया होती हैं, असर की नमाज में पहली चार, इशा की नमाज में पहली चार, इनके कादे उला में भी तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना ये सुन्नत है। और फिर मजीद ये कि दुरूद शरीफ के बाद दुआ भी पढ़ी जाए, जो सातवां फर्ज है वो है खुरूज बिसुनई ही, यानी जो नमाज की बनावट थी उससे बाहर निकल जाना। कादे अखीरा के बाद सलामो कलाम वगैरह कोई ऐसा फेल जो नमाज के मनाफी हो उसे कसदन करना, ये खुरूज बिसुनई ही कहलाता है। मगर सलाम के अलावा कोई दूसरा मुनाफी नमाज फेल अगर कसदन पाया गया तो नमाज वाजिबुल एयादा होगी। और बिला कसद कोई मुनाफी चीज पाई गई तो नमाज बातिल हो जाएगी। कसदन किया तो नमाज हो गई यानी फर्ज साकित हो गया, लेकिन नमाज वाजिबुल एयादा है क्योंकि वाजिब का तर्क किया। सलाम के साथ निकलना वाजिब था, वाजिब का तर्क हुआ, इस वजह से नमाज वाजिबुल एयादा हुई। और बिला कसद अगर कोई ऐसा फेल पाया गया जो सलाम से हट कर है तो इससे नमाज बातिल हो जाती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इन अहकाम को याद रखिए। आइए आज के सिलसिले में हम आखिर में कुछ रिकॉर्डेड सवालात भी शामिल करते हैं। जी सवाल चलाइए।
हाफिज हबीबुल्ला अतारी सरगोधे से बिलोंग करता हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मस्जिद में अजान होने के बाद जमात से पहले चंद अफराद का दूसरी मस्जिद में दरसो बयान और नेकी की दावत के लिए जाना क्या जायज है, कि इन अफराद में से एक फर्द बयान करेगा और बाकी अफराद वो बयान सुनेंगे और वहाँ दूसरी मस्जिद जाकर भी ये लोग जमात से ही नमाज अदा करेंगे, क्या इनका ऐसा करना जायज है? जवाब इनायत फरमाइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।
अव्वलन ये बात जहन में रखिए कि जिस शख्स ने अभी नमाज अदा ना की हो, अजान हो चुकी है, तो नमाज के वक्त में जमात से पहले बगैर किसी हाजत के मस्जिद से निकलना ये शरण दुरुस्त नहीं है, इसे मकरूह तहरीमी फुकाहा ने करार दिया, यानी नजायज और गुना है। बल्कि हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, जिसने मस्जिद के अंदर अजान सुनी फिर बगैर हाजत के मस्जिद से निकल गया और ये लौटने का इरादा नहीं रखता तो फरमाया कि ऐसा बंदा मुनाफिक है। अलबत्ता ये बात जहन में रहे, अगर कोई शख्स अजान के बाद किसी काम के लिए निकलता है, आर्जी तौर पर निकला लेकिन किसी काम के लिए, और जमात से पहले इसका इरादा यह है कि मैं लौट आऊंगा, साथ ही किसी दुकान पर चला गया या किसी घर में काम पड़ गया वहां पर जरूरत के लिए चला गया और इरादा यही है कि मैं जमात के टाइम पर वापस आ जाऊंगा, या ये बंदा दूसरी मस्जिद में इमाम है, अब दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जाना है, या दूसरी मस्जिद के अंदर इसे अजान कहने के लिए जाना है, वहां ये मुअज्जिन है, या फिर वहां पर कोई बहुत बड़े आलिम साहब हैं, इनके उस्ताद हैं, वो दर्स देंगे और ये दर्स सुनने के लिए वहां जाना चाहते हैं, या दूसरी मस्जिद के अंदर ये खुद बयान करने के लिए जाना चाहते हैं या समात करने के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर जमात से पहले अगर निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है, बशर्ते कि वहां जाकर भी ये जमात से ही नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि वहां जमात मिल जाएगी और यहां इनको जरूरत भी है कि मस्जिद से निकला जाए और वहां पहुंचा जाए, इमामत करवानी है या अजान देनी है या हल्का दर्स में शिरकत करनी है या वहां पर दर्स देना है, तो इन वजूहात की बिना पर शरीयत मुतहरा ने निकलने की इजाजत दी है। लिहाजा ये जो चंद अफराद हैं जिनका मकसद यही है कि वहां जाकर ये दर्स देंगे, दर्स सुनेंगे, वहां पर एक हल्का दर्स बनाएंगे ताकि और लोग भी जमा हो जाएं और वहां जाकर भी ये जमात से ही नमाज पढ़ेंगे, तो शरण इसमें हर्ज नहीं है, जा सकते हैं। मजीद सवाल चलाइए।
मेरा नाम मोहम्मद आमिर अतारी फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से सवाल है कि मुसाफिर ने मुकीम इमाम के पीछे नमाज अदा की, किसी वजह से वो नमाज वाजिबुल अदा हो गई, तो अदा करने की सूरत में मुसाफिर चार रकते अदा करेगा या दो? रहनुमाई फरमा दें, जजाकल्लाह खैरा।
जो शख्स मुसाफिर है और मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, अगरचे के किसी वजह से वो नमाज वाजिबुल अदा हो गई है, तो इसका फर्ज साकित हो गया, यानी जो इसने फर्ज मुकीम इमाम के पीछे पढ़ा, पढ़नी तो इसने कसर थी लेकिन चूंकि मुकीम इमाम की इक्तदा की, इसलिए अब ये मुकीम की तरह हो गया, इसने भी चार ही रकत अदा करनी थी और चार रकत अदा करके इसने अपना फर्ज पूरा कर लिया है, फर्ज इसके जिम्मा से अब साकित है। अब जो वाजिबुल एयादा है, वाजिबुल एयादा की तारीफ ये होती है कि पहले वाले फेल ही की मिसल दूसरी बार उसको कामिल तरीके से अदा कर लिया जाए ताकि जो कमी थी या जो इसमें कोताही थी उसे पूरा किया जा सके। तो चूंकि पहले चार फर्ज पड़े हैं तो अब जब वाजिबुल एयादा है तो एयादे की तारीफ के मुताबिक इसे दोबारा उतनी ही रकत अदा करनी है जितनी रकातें पहले इसने मुकीम इमाम के पीछे अदा की थी और वो थी चार, तो लिहाजा ये चार ही पढ़ेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और दुआ भी करते हैं अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम।
हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, इबादत से बरतर इबादत नमाज।